राज्यम एवं गते धर्म सुदस्य राज्यो दुर्योधन तच्चिन्तयध्वं कुरु पुंगमानां धर्म्यं तयुक्तं तयसस्करं च अधर्मयुक्तं न च कायमेत राज्यं सुराणामपि धर्मे राजः। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म के अनुकूल प्राप्त होता हो तो वे उसे लेने की इच्छा करते हैं, थोड़ा सा भी अगर मिले धर्म के अनुसार तो लेना चाहते हैं। आप सभी राजाओं को ये विदित है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है, इनका पूरा अधिकार था राज्य में, उन्होंने छीना है। धर्मार्थ युक्तम तुम ही पतिस्तम ग्रामे पिकश्चिन चदयम बभूसे द्वितीयम च राज्यम विदितम नृपाणाम यथा प्रकृष्टम धृतराष्ट्र पुत्र। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार और छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया, बल और पराक्रम से कभी नहीं किया इनको पराजित, लेकिन इनको हमेशा कष्ट पहुंचाया है, मारने की चेष्टा की है। कैसे? छल कपट के द्वारा। मिथ्योपचारेण यथा हनेन कृत्रिम महान प्राप्त मसह्य रूपम चापि पार्थो विजितो रणे तैन सतेजसा धृतराष्ट्रस्य पुत्रेन। फिर भी राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई चाहते हैं। युधिष्ठिर का देखिए स्वभाव, उनकी भलाई चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे दूसरे राजाओं को युद्ध में जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था उसी को कुंती और मातृक के ये वीर पुत्र मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे, अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से इन उग्र दुष्ट शत्रुओं ने संगबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तथापि राजा सहिता सुरेंद्र अभिप्सते नाम यत्तो स्वयं पांडव सुतैर विजित्यं समाहितं भूमि पतीन प्रपीड्यं तत्प्रार्थयन्ते पुरुषः प्रवीरा कुंती सुता माद्रवती सुतौ च बालस्तमे तैर विविधैरुपायैं सम्प्रार्थिताहं तुम अमित्रय संघं राजं जिहिर संधिर संधिरुग्रं सर्वं जतन्वो विदितं यथावन। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को समझ करके निश्चय करो, युधिष्ठिर की धर्मगीता को भी समझो और निश्चित करो। ये पांडवगण सदा सत्य परायण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने बैठे हुए हैं। यदि अभी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे, तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। भगवान कह रहे हैं ठीक है ना, सही बात है, इनको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। ये बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस कार्य से रोकें। अतोन्य था तय रूपचर्यमाण हन्यो समेतां धृतराष्ट्र पुत्रान तैर विप्रकार कार्य सुरंजनास्तान परिवार ये यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके बाध्य किए जाने पर ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग ये सोचते हो कि पांडव कम अल्पसंख्यक होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। क्या आप सोचते हो कि पांडव कम है और कौरव ज्यादा है तो क्या जीत नहीं पाएंगे? क्या आप लोग सोचते हो ऐसा? तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही। अतः इन्हें आप लोग दुर्बल ना समझें। युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का भी ठीक ठीक पता नहीं है कि वो क्या करेगा। समित सर्वे सहिता सुरिन्दिन तेसाम विनाशाय यते युरेव दुर्योधनस्यापि मतम यथावन न ज्ञायते किम नु करिष्यति इति। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, अभी अंधाधुंध लड़ाई नहीं करना है, अभी थोड़ा स्पष्ट और बात पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है, युद्ध ही करना चाहता है या राज्य देना चाहता है, है ना। इसे दूत भेजा जाए, भगवान का कहना है कि अभी दूत भेजा जाए, मतलब जल्दी काम नहीं करना है, स्पष्ट वो क्या चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य ही कार्य रूप परिणत किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील पवित्र आत्मा कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहां जाए। सावधान भी होना चाहिए दूत को, क्यों सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अधर्मी हैं तो दूत को मार सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पांडवों के साथ में जो कपट का व्यवहार किया, मार डालने की चेष्टा की है, तो दूत सावधान होना चाहिए। अब वो कौन हो सकता है, भगवान ही हो सकते हैं, है कि नहीं। तो भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता है जो कि मतलब सावधान हो और हर प्रकार के उपाय जानता हो। अज्ञायमाने तमते परस्यं किं चा समारम्भे तमं मतं वहा तस्मादितो गच्छतो धर्मशीलः सुचे कुलीना पुरुषो प्रमत्तः। वो दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश और रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य दे देने के लिए विवश कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन सुनकर जितने सभासद थे वो बहुत प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सात्यकी ने जो है ना कुछ बातें कही, तो उसको भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सात्यकी कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर के ऊपर कोई अगर दोषारोपण करता है तो कैसे उसे बोलने का अवसर दिया जाएगा। राजा युधिष्ठिर के ऊपर कोई दोषारोपण अगर करे तो उसको बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है, ये उनकी धर्म पूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है। ये सीधा कपट है, अपने घर में उन्होंने बुला करके उनको हराया, है ना, जबकि युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता नहीं है। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो ये उनकी धर्म पूर्वक विजय कही जा सकती थी। अगर युधिष्ठिर ने उनको बुलाया होता जुआ खेलने के लिए है? कि हाँ हमारे साथ जुआ खेलो और वे युधिष्ठिर को हराते, तब तो माना जाता कि हाँ भाई इनकी धर्म पूर्वक विजय हुई है, है ना। लेकिन अपने घर में उन्होंने बुलाया और वो अपना जुआ खेलने के जो है ना जो कपट विद्या आया है वो जान करके और उनको खेल में हराया तो ये अधर्म ही है उनका, ये भी ये कोई धर्म नहीं है। किसी व्यक्ति अपने घर में कपट पूर्वक जुआ खिला करके और हरा दो उसको, है ना। अगर युधिष्ठिर बुलाते हैं उनको कि आओ हमारे साथ जुआ खेलो और तब युधिष्ठिर को हराते हैं, है ना, तो माना जाता है कि हाँ भाई तुमने सचमुच विजय प्राप्त की है। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है, क्या उनका परम कल्याणमय कर्म यही कहा जा सकता है, क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है। ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं, अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाएं, क्यों प्रणाम करें या क्यों उनसे विनय करें। ये कहां तक हो जाता है कि युधिष्ठिर अब उनको प्रणाम करें और विनय करें, क्या जरूरत है। यदि कुंते सतम गे क्रीडंतम भ्रातृवेश अभिगम्य तत्ते साम धर्म तो भवेन समाहूय तु राजानम छत्र धर्म रतम सदा किम ते साम परम शुभम कथम प्रणीपते चायम यह कृत्वा परम। वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब ये अपने बाप दादों के राज्य को पाने के अधिकारी हो गए हैं। यदि युधिष्ठिर अन्याय से भी अपना धन अपना राज्य लेना चाहें तो भी अत्यंत दीन बनकर शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने या भीख मांगने के योग्य नहीं है। उनका अपना ही राज्य है वैसे भी, तो भी मांगने की जरूरत नहीं है कि वो भीख मांगे। क्षत्रिय अपना जो अधिकार है वो छीनता है, भीख नहीं मांगता है। तो वैसे भी इनका अधिकार है, छीनने का अधिकार है, मांगने का मांगने की जरूरत नहीं है। वनवासान विमुक्तस्तु प्राप्तः पैतामहं पदम् यद्यं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरं एवं अप्ये मत्यंतं परान्नारति याचितुम्। कुंती के पुत्र वनवास की अवधि पूरी करके जब लौटे हैं तब कौरव ये कहने लगे हैं कि हमने तो उन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा में ये कैसे कहा जाए कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते हैं? ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि समय से पहले पहचान लिया है। जब एक साल पूरा हो गया तब उन्होंने पहचाना है ना, तो ये कोई सही बात है? ये कहां तक सही है कि उन्होंने समय से पहले पहचाना? कथम च धर्म युक्तास्ते चाराज्यम जिहे सभा निवृत्तवासान कौन्तेयान याहोर विदिता इति। ये वे भीष्म द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय नहीं कर रहे हैं। उनके ही पक्ष में जो भीष्म है द्रोण है वो भी पांडवों का समर्थन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि पांडवों का राज्य दे दो, तो भी नहीं दे रहे। तो सात्यकी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं तो रणभूमि में तेरे बाणों से उन्हें बलपूर्वक मना कर महात्मा युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा। अब एक ही उपाय है, क्या अपने पैरों पहने बाणों द्वारा उनको मार करके युधिष्ठिर के चरणों में गिराऊं उनको? यही धर्म है। अहम तो तांच तैर बाणेर अनुनीय रणे बला पादयो पादय श्यामी कौन्तेय महात्मनः। यदि वे बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में गिरने का निश्चय नहीं करेंगे तो अपने मंत्रियों से तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो यमलोक जाना पड़ेगा उनको अगर नहीं चाहते हैं युधिष्ठिर के चरणों में गिरना। ठीक है ना, ये धर्म की न्याय की बात यह है, सात्यकी बता रहे हैं। अथते नाम विवश्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः गमिष्यन्ति सहामात्या यमस्य सदनं प्रति। जैसे बड़े बड़े पर्वत भी वज्र का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मुझ सात्यकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य उनमें से किसी में भी नहीं है। नहीं ते यो युधानस्य संदब्धस्य युद्धतः वेगं समर्था संसोढुं वज्रस्य मयि धराम। कौरवों में ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखते हुए भी युद्ध भूमि में गांडीव धनवा अर्जुन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी दुर्धर्ष वीर भीमसेन यम और काल के समान तेजस्वी नकुल सहदेव और विराट द्रुपद का और धृष्टद्युम्न का सामना कर सकता है? फिर और कौन है लड़ने वाले हमारे पक्ष में? द्रौपदी की कीर्ति को बढ़ाने वाले ये पांचों पांडव कुमार अपने पिता के समान ही पराक्रमी हैं, सूरवीर हैं, महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का वेग तो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। और फिर और कौन है? गद है, प्रद्युम्न है, सांब है, ये भी काल सूर्य और अग्नि के समान अजय हैं, इन सब का सामना कौन कर सकता है? फिर सात्यकी ने क्या कहा, हम लोग शकुनि सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। देवयम धृतराष्ट्रस्य पुत्रम शकुनिना सह कर्णम चैव निहत्याजौ अभिषेक्ष्यामे पांडवम। आठ ताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है, ठीक है ना? शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म है। अगर इनसे प्रार्थना करें कि भैया हमारा राज्य दे दो, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये क्या है? अधर्म है। ये धर्म है, अधर्म और अपयस की बात है ये। ना धर्मो विद्यते कश्चन शत्रुन त्वादतायिनः अधर्म्यम् अयशस्यम् च सात्रपाणाम् प्रयाचनम्। अतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर के मन में जो अभिलाषा है उसी की आप लोग आलस्य छोड़कर सिद्धि करें, धृतराष्ट्र राज्य लौटा दें और पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ग्रहण करें। अब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए, अन्यथा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। अब वो समय नहीं है कुछ और सोचने का, या तो राज्य दें या फिर युद्ध में सदा के लिए सो जाएं। हिरण्यकश्यपस्य यः कामः तं क्रोधं मदन्विताम् निःसृष्टं धृतराष्ट्रेण राज्यं प्राप्नोति पाण्डवः। अद्य पाण्डवोऽसुरो राज्यं लभताम् वा युधिष्ठिरः नेता वा रणे सर्वे सप्स्यन्ति वसुधा तले। इसके बाद सभा में महाराज द्रुपद बोलते हैं। द्रुपद क्या बोलते हैं? कहते हैं जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति कोमल वचन बोलेगा वो मानो गधे के प्रति कोमल व्यवहार कर रहा है और गायों के प्रति कठोर व्यवहार कर रहा है। पांडवों का जो है ना, अगर कोई दोस्त निकालता है और दुर्योधन के प्रति कोमल व्यवहार करता है तो क्या है? वो गधे के साथ कोमल व्यवहार करना और गाय के साथ कठोर व्यवहार करना है। वो गधा है, ये गाय है। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है। जो पापी और मूर्ख होता है तो उसी को ही बेवकूफ समझता है जो कोमल व्यवहार करे, है ना। और कोमलता का बर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पा ली है। बेवकूफ है, मैंने इसका धन, अब तो मैं इसका धन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ कोमल व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ये तो पागल है, बेवकूफ है, ऐसा ऐसा होता है। तो महाराज द्रुपद कह रहे हैं, हम अब इसी प्रस्ताव को संपन्न करेंगे, इसी के लिए यहां प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सेना तैयार करें, अधिक से अधिक सेना तैयार करें। हमारे दूत जो है जाएंगे कहां? शल्य देश, दृष्टिकेतु, जयत सेन और के कह देश में जाएं। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहां संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं तो प्रथम निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। ये भी देखो, राजाओं का धर्म होता है। दुर्योधन अगर पहले भेज देगा अपने दूतों को निमंत्रण के लिए तो वो जो है ना फिर दुर्योधन के पक्ष में आ जाएंगे। इसलिए महाराज द्रुपद क्या कह रहे हैं कि पहले हम भेजें राजाओं के पास दूत। सचा दुर्योधनो अनुगुणम प्रेषय क्षति सर्वशः पूर्वाभिपन्ना संतश्चा भजन्ते पूर्वचोदनम्। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए, इसके लिए शीघ्रता करो। मैं समझता हूं हम सब लोगों को महान कार्य का भार वहन करना है। हमारे पास बहुत बड़ा कार्य है। क्या? जल्दी ही सब राजाओं को हम निमंत्रण दें तो हमारे पक्ष में राजा हो जाएंगे। द्रुपद कह रहे हैं, तत्परध्वम नरेन्द्राणाम पूर्व में प्रचोदन है माधी कार्यम वोढव्यम इति में वर्तते मदी। राजा शल्य और उनके अनुगामी नरेशों के पास शीघ्र दूत भेजे जाएं। पूर्व समुद्र के जो राजा भगदत्त हैं उनके पास भी दूत भेजना चाहिए। शल्यस्य प्रेषिताम शीघ्रम एतदस्य अनुगान्वपां भगदत्ताय राज्ञे च पूर्व सागर वासिने। इसी प्रकार अमितौजा उग्र हार्दिक अंधक दीर्घ प्रज्ञ और सुरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। तो काफी राजाओं के नाम दिए हैं कि इनके पास जल्दी ही निमंत्रण भेजा जाए। तो इस तरह से हमने चर्चा की धर्म की। ये ऐसी चर्चा नहीं कि अंधाधुंध जो है ना लड़ाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। फिर भगवान कृष्ण जब दूत बन के गए तो फिर साफ साफ उन्होंने बताया और साफ साफ पूछा, सब बात बताई कि ये बात समझो, ये बात समझो, क्या धर्म है, क्या धर्म है, और फिर बोलो अब क्या चाहते हो। लेकिन और फिर जो है जवाब जब भगवान को मिल गया साफ साफ कि ठीक है युद्ध होगा, फिर भगवान जो है पांडवों को तैयार करते हैं युद्ध करने के लिए, है ना। अब अर्जुन का जो है विचार करना, युद्ध ना करने का जो विचार है ये बहुत गलत है, क्योंकि युद्ध करना है युद्ध नहीं करना है कितना विचार हो चुका इसके पहले। और फिर भगवान स्वयं दूत बनकर के गए कि भाई अगर युद्ध रोकना चाहो तो युद्ध रुक सकता है ना। सब कुछ जो है ना बातें बड़े विस्तार में भगवान ने की। और उस सभा में जो है भीष्म भी, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य और फिर पूरी पृथ्वी भर के जो ऋषि मुनि लोग थे वो भी सभा में उपस्थित थे। उनके सामने जो है ना सब बात हुई, निर्णय हुआ। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कैद करने का भी विचार किया, लेकिन कृष्ण भगवान है इसलिए कैद नहीं हुए, नहीं तो उसने तो अपना जो है ना ये काम भी पूरा कर लिया था कि एक दूत को जो है ना वो कैद कर रहा है ना। तो इन सब बातों के बाद जो है ना जब युद्ध निश्चित हो चुका है, अब अर्जुन क्यों विचार कर रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अब अधर्म है क्या है, लेकिन तो ये चीज जो है ना समझने की। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सुधर्म को भी जो ना देखते हुए तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है कि अब युद्ध नहीं करना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि युधिष्ठिर जानते थे कि उनका छीनना धर्म है, मांगना धर्म नहीं है, फिर भी वो मांगते थे। नहीं, उन्होंने जो है बिल्कुल धर्म पर विचार किया, हालांकि बहुत जल्दी किसी कार्य का निर्णय नहीं करते थे वो, लेकिन अच्छी प्रकार से धर्म पर विचार करते हुए ही उन्होंने जो है हर कार्य किए। लेकिन धैर्य बहुत ज्यादा, बहुत धैर्य, कोई व्यक्ति इतना धैर्य धारण नहीं कर सकता, है ना। लेकिन धर्म से बंधे होने के कारण ही उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहन किए, है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय धर्म से शूद्र धर्म में आ सकता है? भगवान कहते हैं श्रेयांश धर्म हो विगुणा पर धर्मा तुलसीदास, पराय धर्म चाहे जितना भी अच्छा हो, अपने धर्म अपना धर्म ही कल्याणकारी है, चाहे उसमें कोई गुण ना हो। सुधर्म ने धर्म श्रेय, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, जीना भी कल्याणकारी है और मरना भी कल्याणकारी अपने धर्म में। पर धर्मो भयावह, पराय धर्म भयानक है ना। लेकिन इसको समझना है। अब ये उस तरह का नहीं है कि भाई शूद्र के परिवार में कोई पैदा हुआ तो शूद्र है, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय है ना, ये चीज नहीं है, है ना। तो महाराज मनु के जो है ना जो 10 पुत्र हुए थे उनमें भी कुछ ब्राह्मण बन गए, कोई शूद्र बन गए, कोई क्षत्रिय बने, है ना। तो ये चीज जो है भगवान ने गीता में क्या बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम जा परंतप कर्माणि प्रविभक्ताने स्वभाव प्रभव्य गुण है, स्वभाव से उत्पन्न जो गुणों से उनके कर्म विभाजित हुए हैं। जन्म से नहीं कि भाई क्षत्रिय परिवार में कोई पैदा हुआ तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी प्रश्न करते हैं क्या ऐसा होता है कि डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ तो डॉक्टर, आप किसी को ऐसे मानते हो क्या कि डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ है इसलिए डॉक्टर है, वकील के परिवार में पैदा हुआ तो वकील है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये नहीं होता ऐसा कि क्षत्रिय के परिवार में कोई पैदा है तो क्षत्रिय है। हाँ, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है तो क्षत्रिय बनने की बहुत संभावना है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि क्षत्रिय हो, जैसे वकील के परिवार में पैदा हुआ है तो वकील बनने की संभावना है, अवसर है बहुत उसको, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो वकील बन जाए, है कि नहीं। यस ये लक्षणम प्रोक्तम कुंसो वर्णाभिव्यंजकम, है ना। तो वर्ण के अनुसार जो है जिसके जो लक्षण हो तो उसको उसी प्रकार से समझना चाहिए, है ना। जैसे कर्ण में जो ना क्षत्रिय का लक्षण था, उसने अपने को बता दिया ब्राह्मण, परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए परशुराम जी की सेवा करने लगा। परशुराम जी ने नियम बनाया था कि अब क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, तो उसने जो है ना बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो परशुराम जी का शिष्य बन गया ना। लेकिन लक्षण तो क्षत्रिय का था, तो परशुराम जी उसको ब्राह्मण समझ करके उसको अपना सेवक बना लिया। तो उसके गोद में सिर रख करके सोए हुए थे, तो कर्ण की जो है ना उस समय दोनों हाथ जो है ना गोद में थे और दोनों हाथों के ऊपर सिर था परशुराम जी का, क्योंकि वो गुरु के सिर को जो है ना अपने हाथों में रखे था जिससे कि गुरु के सिर को कोई कष्ट ना हो, इसलिए बड़े कोमलता पूर्वक उसने अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को गुरु की सेवा में लगाया हुआ था, अपनी गोद में हाथ रख लिए जिससे कि पैर से भी स्पर्श ना हो उनके सिर का, इसलिए दोनों हाथ लगा दिए। अब क्या हुआ कि उसके दोनों हाथ दोनों पैर अब कोई काम नहीं कर सकते, और पैर में क्या था कि इधर जंघा में एक कीड़े ने काटना शुरू किया, अब वो काट रहा था तो खून निकल रहा था उसे, अब छत्री था इसलिए सहन कर रहा था, ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता, वैसे सहन नहीं कर सकता, शुद्ध सहन नहीं कर सकता, छत्री था, तो इसलिए उसने विचार किया कि अगर मैं जो है हाथ हटाऊं, हाथ से अगर उसको हटाऊं तो हाथ हटाना पड़ेगा अपने गुरु के सिर से, तो गुरु के जो है ना नींद में बाधा पड़ेगी, इसलिए गुरु सेवा के लिए उसने अपना हाथ नहीं हटाया, और वो जो कीड़ा था वो काट काट करके उसकी जांघ को इतना खून निकला कि वो खून से जो है क्या था कि गोद भर गई, और परशुराम जी के कानों तक में जो थे खून जब आया तो चप चप होने लगा, तो फिर उनकी आंख खुली, इतना खून पूरे कान भीग गए उनके, तो खून में है? तो फिर उसने फिर यही कहा कि अब तुम सच बताओ, तुम क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम तो क्षत्रिय हो। तब उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं क्षत्रिय हूं, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो शुभ और अशुभ दोनों कर्म का जो फल है तुमको भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म क्या है, तुम्हें गुरु की सेवा के लिए तुमने इतना कष्ट सहन किया तो ये तो तुम्हारा शुभ है कर्म है। अशुभ का अशुभ क्या है, अशुभ कर्म क्या है, झूठ बोला, मुझको तुमने धोखा दिया, वो शुभ कर्म है, इसलिए दोनों का फल मिलेगा। तो शुभ कर्म का फल क्या है कि तुमको ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं, नहीं अशुभ कर्म का फल क्या होगा कि तुमको समय पड़ने पर याद नहीं आएगा, जब जरूरत होगी तो तुमको याद नहीं आएगा, क्या हुआ बेकार हो गया ना, सब बेकार हो गया। तो इससे पता चलता है अगर हम जो है ना धोखा देते हैं, हम गुरु की सेवा भी करते हैं गुरु को धोखा भी देते साथ साथ, तो वो सेवा तो सब बेकार हो गई, है ना, तो कुछ फायदा नहीं है। हम साथ साथ धोखा भी देते हैं कुछ सेवा की बड़ी भावना है, सेवा की तो बहुत भावना है, सेवा के लिए जो है ना जान देने के लिए तैयार है, ये साथ साथ धोखा भी दे रहे हैं, तो वो सब सेवा क्या होगी, बेकार। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की श्री श्री गौणदाय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हरे कृष्णा।